Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Pushpadan's Kaivalya Upanishad in Hindi, presented by Swami Acharya Swami Sri Bhagavatanandji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Kalyananam Nidhanam Kalimalamathanam Pavanam Pavananam Patheyam Yanmukho Sapadi Parapada Prapte Prasitasya Visramasthanam Ekam Kavivaravachasam Jivanam Sajjananam Bijam Dharmadrumasya Prahuvatu Bhavatu Bhutaye Ramanama Bhutaye Ramanama Vihaya Piyusharasam Munishwaraha Mamang Itiswapanambuja Panakotuki Sagupavalaha Shyamatanutuvaha. Param Premaspad Paramatma Swarup, आप कैवल्य उपनिषद श्रवण कर रहे हैं नारायण. पिछले मंत्र में आपने जागृत स्वप्न सुसुप्ति का वर्णन सुना. जागृत में बुद्धि और स्वप्न में मन मालिक होता है और उसी की चलती है. जागृत में बुद्धि है. जागृत में बुद्धि इसलिए है कि जागृत में आप निर्णय कर सकते हैं बुद्धि के द्वारा. ये भी निवेदन किया गया था कल कि हमारे शरीर में 5 कोष हैं. ये जो स्थूल शरीर दिखाई दे रहा है, जो अन्न से पुष्ट है, जैसे ये हाथ है, तो ये अन्नमय कोष है. स्थूल शरीर है, विश्व इसका नाम है. ये अन्नमय कोष विश्व इसका नाम है, स्थूल शरीर है और जागृत अवस्था है. इसमें बुद्धि पूरी जिम्मेदारी से काम कर सकती है और 5 कोष इसमें काम करते हैं. दूसरी अवस्था स्वप्न की है. स्वप्न की अवस्था है सूक्ष्म कारण शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और तेजस इसका नाम है. तो इस स्वप्न में प्राणमय कोष, मनोमय और इच्छा का जो सृजन करता है मन, वो मनोमय कोष है और बुद्धि निर्णय करती तो विज्ञानमय कोष. तो प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय 3 कोष इसमें काम करते हैं. अन्नमय कोष इसमें काम नहीं करता, वो तो पड़ा रहता, सोए गया. तो ये 3 कोष जिसमें काम करें उसको कहते हैं स्वप्न. और इसमें मन मालिक है पूरी तरह से, सृष्टि रचना करता है, आकाश पाताल सब बना लेता है. कल ये भी प्रश्न निवेदन किया गया था कि भाई जब सुसुप्ति में अकेला ही रह जाता है जीव और आनंद का भोग करता है, तो फिर आनंद लेने के लिए ठीक है, अब ये जागृत और स्वप्न अवस्था में सुख दुख का भोग क्यों करने जाता है? स्वप्ने सजीवा सुख दुख भोगता, सुख दुख का भोग करता है तो जाता ही क्यों है? तो ये इसका उत्तर ये दिया गया था कि भाई ये अपने बस की बात नहीं है. चित्त पटल पर चिन्ह बने होते हैं कर्म संस्कारों के और वो चिन्ह न जाने किस जन्म के हुए, जन्म जन्मांतर के चिन्ह बने होते हैं और उन संस्कारों से, कर्म के संस्कारों से व्यक्ति बेचारा मजबूर रहता. तो इच्छाओं की तीव्रता और कर्मों की तल्लीनता और संस्कारों की शक्ति, ये तीनों मिल करके घसीट के जीव को, के मन को जागृत स्वप्न में और जागृत में ले जाता है, सुख दुख का भोग कराता है। और वो ये भी मालूम है कि अपने ही किए हुए कर्मों से मिलता है, जो आपने कर्म किए हैं उसी का मिलता है। जैसे आपको किसी को मारना है, किसी को कष्ट देना है, हिंसा करनी है, चार गाली दी अपमान करना है, ये भी मारना ही है, सदका विरोधी है तो ये पाप है। जो सच्चिद आनंद का विरोधी वही तो पाप है। भय और ग्लानि जिस कर्म में हो वो पाप है, और जिसमें भय और ग्लानि न हो वो पुण्य है। तो किसी को आप मारने जाओगे, किसी को गाली दोगे, किसी को अपमानित करोगे, तो सिद्धांत तो नहीं है, ये पाप हो जाएगा और इसका फल किसी न किसी दिन मिलेगा आपको। तो जैसे अभी आपने सुना चित्त पर चिन्ह जम जाते हैं, वो भले आप उस समय कोई बात हो जाए न मिले तो न मिले, कर्म का फल कभी न कभी जरूर मिलेगा। 100 वर्ष तक कर्म पीछा नहीं छोड़ता, कर्म का फल मिलता है। धृतराष्ट्र ने पूछा भगवान वासुदेव से कि महाराज मुझे याद है 100 जन्म की हमने कोई जघन्य अपराध नहीं किया। वासुदेव मुस्कराए, बोले 100 ही जन्म की तो याद है, 101वां जन्म हमसे सुन लो। एक बार तुम्हारे शरीर में कोढ़ हो गया था तो वैद्यों ने बताया कि 100 पक्षी मार के लाओ तो हम दवा बना दें। ब्राह्मणों ने मना किया, महाराज शरीर तो आज है कल नहीं रहेगा, क्यों पक्षी मरवाते। बोले वाह, रानी खुश हो जाएगी, प्रजा खुश हो जाएंगे। अब जब ये बात बताया रानी खुश हो जाएगी, प्रजा खुश हो जाएगी, तो भाई लिया तो वही 100 पक्षी 100 जन्म तक तुम पुण्य ही करते चले आए, राजा ही होते आए, उनको मौका ही नहीं मिला। इस जन्म में तुमने 5 ऐसे जघन्य अपराध किए हैं कि उस पाप को मौका मिल गया। वो बेचारा मौका ढूंढता था कि कब मौका मिले। 5 जघन्य अपराध किए तुमने, वृद्ध ब्राह्मण शिशु और नारी। तो वृद्ध और ब्राह्मण शिशु इनका और नारी का अपमान जब किया जाता है तो स्वाभाविक सब पुण्य दब जाते हैं और पाप का नंबर बढ़ जाता है। तो तुमने ये जो गो ब्राह्मण वृद्ध शिशु और नारी का अपमान किया है इसी जघन्य अपराध के कारण, अरे तुम राजा थे, तुम्हें ये चाहिए था कि इनका सम्मान करते, तो तुमने जो अपमान किया है उसी का ये फल है। ये कहीं बाहर से नहीं आया, ये कर्म अपने ही कर्म को न काउ सुख दुख करदाता, निजकृत कर्म भोग फल भ्राता, अपना ही कर्म सामने आता। तो जब दुख आवे तो ये प्रसन्नता होनी चाहिए कि अच्छा तो है, हमारे पिछले कर्म जो अशुभ थे उनके कर्मों का फल हमें मिल रहा है। ये बेचारा दूसरा थोड़ी मददगार है, ये तो हमारे किए हुए कर्मों का फल है, ये समझना चाहिए। सो व्यक्ति नहीं समझता है कि हमारे कर्मों का फल है, वो दूसरे को दोष देने लगता है, ये न होता तो हमें दुख न मिलता, ऐसी उल्टा समझ है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि इन कर्मों के कारण, कर्म के वासना के संस्कारों के कारण हमें सुख दुख भोगना पड़ता है जागृत स्वप्न अवस्था में। अगला मंत्र है, तस्मा जायते प्राणः मनः सकलेन्द्रियाणि च। इससे प्राण पैदा हुए, मन पैदा हुआ, इंद्रियां पैदा हुई, और क्या हुआ? बोले खम वायु ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। ये मंत्र ज्यों का त्यों मुंडक में भी है और गीता में थोड़ा बदल के है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयम ये अपरा है और इतस्त्वन्याम प्रकृतिम बुद्धि मे पराम, मेरी परा और अपरा दो प्रकार की बुद्धि है। और वो कैसी है? बोलो जीव भूता महाबाहो और यया धार्यते जगत एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि तुपधारय। और कौन है? अहम प्रभुः प्रलयश्चास्मि, मैं उसका प्रभाव प्रलय करने वाला हूँ। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाइव। सातवें अध्याय के शुरू में ही ये मंत्र दिए हुए हैं। तो दो प्रकार की प्रकृति हुई, एक परा एक अपरा। इसी परा को चेतन प्रकृति कहते हैं और इसको अपरा को जड़ प्रकृति कहते हैं। एक चेतन प्रकृति है जीव रूप और एक अपरा प्रकृति है जो जड़ प्रकृति है। है प्रकृति स्वभाव, प्रकृति माने स्वभाव। भगवान कहते हैं खम माने आकाश, भूमि रापो नलो वायु माने मट्टी पानी आग हवाई पांच महाभूत हैं। और यहां भी बताया कि ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये पंच महाभूत हैं और इनकी पांच तन्मात्राएं हैं। तो तन्मात्राएं हो गई शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अब ये पांच तन्मात्राएं और पांच भूत बन गए। इसी को महाभूतानि, ओ गीता के 13वें अध्याय में महाभूत बताए। और मनोबुद्धिरेव च इंद्रियाणि दशैकंच मनोबुद्धिरेव च इच्छा द्वेषा सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतर क्षेत्रम सविकार मुदाहृतम। ये क्षेत्र है तो ये चाहे परा अपरा कह लो स्त्रीलिंग, कहे क्षर और अक्षर पुरुष कह लो, चाहे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ कह लो, बात एक ही है। इसलिए उन्होंने ये कह दिया कि जिससे पुलिंग और नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग का भेद न हो। ये हमारी प्रकृति है, हमारा स्वभाव है, हम ही से उत्पन्न हुआ है और हम ही में लय हो जाता है। उत्पन्न हुआ हम ही से और हम ही में लय हो जाता है। ये दो प्रकार की प्रकृति बताई। अब इस पर थोड़ा विचार करना है। ये मंत्र मुंडक में भी है और गीता में भी तो है ही है, भूमि रापो नलो वायु। तो ये मिट्टी पानी आग हवा और इनसे पांच तन्मात्राएं बनी। यहां कहते हैं कि एतस्मात् जायते प्राणः, प्राण पैदा हुआ। प्राण होता है दस, प्राण अपान अपान उदान समान, ये पांच प्राण हुए। हृदय प्राणा गुदे पाना समानो नाभिमंडले उदाना कंठ देशे च सर्व देश शरीर गहा। देखो ब्यान संपूर्ण शरीर में रहता है और हृदय में प्राण। एक दिन बताया गया था कि हृदय में प्राण वायु है, वो भीतर जाती है जो वायु, उसको प्राण कहते हैं, वो दीर्घ होती है। और जो बाहर निकलती है वो अपान वायु होती है, वो लघु होती है। प्राणापानो समूह कृत्वा नासा भिंतर चारणो, इसकी व्याख्या में बताया था। जरा अनुलोम विलोम कर लो तो सम हो जाता है, प्राणापान एक सा हो जाता है। तो ये हृदय प्राणा गुदे पाना समानो नाभि मंडले, नाभि में समान वायु होती है। उदाना कंठ देशे च, कंठ देश में उदान वायु होती है। और ब्याना सर्व शरीर गाहा, सारे शरीर में व्यान वायु होती है, इसीलिए वायु का ये लक्षण है, कहीं शरीर में कहीं कोई दर्द होगी तो वायु के कारण होती है, वायु बढ़ रही है, ऐसे समझ लेना चाहिए। तो उसी को प्राण कहते हैं, प्राण उपसर्ग है, अन्न श्वास लेने को कहते हैं। जो आप ऑक्सीजन नाक से ले जाते हो वो सीधी लंग्स में जाती है, फेफड़े में, और फेफड़े में सारे शरीर का अशुद्ध रक्त होता है, वो फैक्ट्री ऐसी कि शुद्ध की जाती है, वो रक्त शुद्ध हो जाता और शुद्ध रक्त हो करके पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा हार्ट में पहुंच जाता है। अब हृदय में दो चार भाग हैं, दो आर्किल और दो वेंट्रिकल, इनमें वो जाता है शुद्ध रक्त, और शुद्ध रक्त हृदय है, हृ माने लेना, लंग्स से लिया शुद्ध, और दा माने देना, वो ऐसे कर देता तो पहुंच गया, और या माने जितना जिसको जरूरत है उसको पहुंचाना, जैसे सबसे पहले ब्रेन में जाता है वहां ज्यादा रक्त की जरूरत है, फिर और शरीर में जहां जितनी जरूरत है उसको पहुंचा देता है। ये प्रक्रिया चलती रहती है, इसीलिए हार्ट यूं करता रहता है, बंद खींचा और फिर फेंका, फिर लिया, फिर फेंका, इस तरह से वो चलता रहता है। तो ये प्राण वायु करता है। अब देखिए फैक्ट्री चल रही है भीतर, आप पड़े सो रहे हैं ठाट से, इसी तरह से अन्न का पाचन होता है। ये अन्न नलिका और श्वास नलिका, जिसको फेरेंक्स लेरेंक्स बोलते हैं, ये दोनों फेरेंक्स के द्वारा अन्न जाता है, जीव में एक लार निकलती है, वो लार मिलती है उसमें भोजन, फिर भीतर अन्न नलिका के द्वारा गया अन्न, तो कई जूस मिलते हैं, गाल ब्लैडर से पित्त मिला, पेंक्रिया से, लीवर से, ये सब से जूस मिल के उनको मंथन होता है, और मंथन होकर के दो भाग बन जाते हैं, एक सॉलिड बनता है ठोस और एक लिक्विड बनता है तरल। तो ये तरल पदार्थ तो मलमूत्र निकल जाता है, और ठोस पदार्थ के सात भाग होते हैं, रसा, श्रक, मांस, मेदा, मज्जा, अस्थि, शुक्र। तो ये 32 दिन में तैयार होता है, क्या बढ़िया फैक्ट्री है, जरा सोचो। ऐसी बढ़िया फैक्ट्री आप बनाए तो नहीं बन पाएगी, आप पड़े सो रहे हो और यहां सब इंतजाम हो रहा है। कभी कभी ये बिजली फेल हो जाती है, लेकिन ये कभी बिजली फेल नहीं होती, ये बराबर चलती। एतस्मात् जायते प्राणः मनः, इससे है प्राण पैदा हुआ, ये प्राण है, और फिर मन पैदा हुआ, और फिर संपूर्ण इंद्रियां, ये सब महत्तत्व का है तमाशा। माने प्रकृति, प्रकृति से महत्तत्व, महत्तत्व से अहंकार, अहंकार से तीन गुण हुए, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तमोगुण से ये पंच महाभूत बन गए और पंच तन्मात्रा, रजोगुण से सब इंद्रियां बन गई, अंतःकरण बन गया, और रह गया सत्वगुण, सो अंतःकरण बन गया। ऐसे रजोगुण से इंद्रियां प्राण बन गए और सत्वगुण से अंतःकरण बन गया। अब ये 10 इंद्रियां, 5 प्राण और 4 अंतःकरण, 19, ये तमाशा सबका सब तैयार हो गया। किससे बना? एतस्मात् आकाशत् वायुः, देखो वायु, अग्नि, अग्ने, आपा, अद्भ्या, पृथ्वी, ऐत्री में बड़े विस्तार से इसको दिया। इसी आत्मा से ये सब बन गया तमाशा। अरे आत्मा से बन गया? कहां आत्मा से बन गया? देखो उपनिषदों में जगह जगह कहीं तो ये वर्णन आया, आत्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से आप, जल, जल से, इस तरह से। और कहीं वर्णन ये आया, तत् तेजो असृजत तद अपाह असृजत, कहीं ये आया, कहीं तेज बनाया और जल बनाया, और कहीं ये आया कि एकाकी न रबते, एको हम बहुत श्याम, अकेले रमण करने में मजा नहीं आता है, इसलिए हम अनेक हो जाएं। तो अनेक हो गया, तमाम नाम रूप, नाम रूपाणी व्याकरवाणी, नाम रूप बन गए। तो ये विविध प्रकार से जो सृष्टि का क्रम है, वर्णन है, ये क्यों है? अगर सृष्टि होती होती तो एक सी होती, ये अलग अलग, कोई कह रहा आत्मा से आकाश पैदा हुआ, कोई कह रहा तेज जल हुआ, कोई कह रहा कुछ हुआ, प्रकृति अलग हुआ, प्रकृति महत महत से अहंकार, अहंकार से तीन गुण, तीन गुणों से ये, तो अलग अलग ये वर्णन है। इसका मतलब है कि सृष्टि का वर्णन प्रतिपादित नहीं है, प्रतिपाद्य विषय सृष्टि का वर्णन नहीं है, प्रतिपाद्य विषय जिस सृष्टि जिसने बनाई उसका प्रतिपाद्य है। जीव अज्ञान का आश्रय है, और विषय और इंद्रियां ये सब का सब ये क्या है, ये विषय है अज्ञान का। तो अज्ञान का आश्रय जीव और अज्ञान का विषय ये सब तमाशा जगत। जगत क्या है? ये विषय है, प्रतिपाद्य विषय। बल्वाचार्य जी महाराज ने तो जगत और संसार को दो भागों में बांटा, इसी को पंचदशी में जीव सृष्टि और ईश्वर सृष्टि कहा। यो इसलिए बताया कि मैं और मोर तोर तय माया, जही बस कीन्हे जीव निकाया, ये दोनों का अर्थ एक ही है, गच्छती थी जगत और संसरणम इति संसारा, जो चल रहा है वो जगत है, और जो संसरणा संसरणात संसारा, जो सरक रहा है, जो पकड़ में नहीं आ सकता, कितना पकड़ने की कोशिश करो पकड़ा नहीं जा सकता, स्यूं सरकता ही रहता है, सरकता ही रहता है। इसीलिए कहा गया वर्तमान को आप नहीं पकड़ पाते, जो पकड़ते हो ना वो भूत हो जाता है। जैसे आप इस समय कहोगे इतना बजा है, तो जब से मुंह से निकालोगे तब से तो सेकंड निकल गया, तो भूत हो गया ना। तो जो आप वर्तमान में टाइम बताते हो तो भूतकाल का बताते हो, वर्तमान तो है ही नहीं। इसलिए मन ज्यादातर आप या तो भूत में दौड़ाते हो या भविष्य में दौड़ता रहता। अभी आपने सुना कि जागृत अवस्था में बुद्धि मालिक है, यदि आप चाहो तो विवेक पूर्वक बुद्धि से काम ले सकते हो, और स्वप्न का मालिक मन है, वो अपनी वासनाएं निकलता है जैसी वैसी, जैसे नया धरती नया आकाश सब तू लपय। मणिराम का और ईश्वर से संवाद हुआ, बोले हम तुम एक, अरे तुम कैसे हमारे, बोले वाह हम भी सृष्टि करते तुम भी सृष्टि करते,